नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वहां से शुरू होती है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं
और वे हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे के
बिल्कुल,
बाद।
बिल्कुल। ग्रीम सिम्सियन की द रोजी प्रोजेक्ट तो सबको पसंद आई थी, लेकिन उसकी अगली कड़ी द रोजी इफेक्ट एक ज्यादा मुश्किल सवाल पूछती है।
सवाल ये कि क्या एक रिश्ता जो पूरी तरह तर्क और सिस्टम पर बना हो,
हाँ,
वो एक बच्चे के आने के उस भावनात्मक तूफान को झेल सकता है?
यही यही सवाल इस उपन्यास की जान है।
और इसे लिखने के लिए ग्रीम सिम्सन से बेहतर कौन हो सकता था? वो उपन्यासकार बनने से पहले एक आईटी कंसल्टेंट थे,
अच्छा,
तो उनका वो जो विश्लेषणात्मक नजरिया है वो उनके मुख्य किरदार डॉन टिलमैन में पूरी तरह उतर आया है।
सही बात है। ये किताब सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है,
बिल्कुल नहीं।
ये हमें एक ऐसे दिमाग के अंदर ले जाती है जो दुनिया को शायद हम सबसे बहुत अलग तरीके से देखता है, और आज हम उसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम डॉन और रोजी को कहां पाते हैं, मतलब द रोजी प्रोजेक्ट के उस खुशनुमा अंत के बाद अब क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में?
वे न्यूयॉर्क में है, एक नया शहर, एक नई जिंदगी। डॉन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स का प्रोफेसर है और रोजी वो अपनी पीएचडी पूरी कर रही है।
तो सब कुछ सेट है।
बिल्कुल, सब कुछ वैसा है जैसा डॉन को पसंद है, एक व्यवस्थित, मतलब एक तयशुदा जिंदगी।
एक सिस्टम।
हाँ, उनका हफ्ता एक स्टैंडर्डाइज्ड मील सिस्टम पे चलता है, काम के घंटे तय हैं, सब कुछ घड़ी की तरह। डॉन के लिए तो ये एक आदर्श दुनिया है।
यानी सब कुछ नियंत्रण में है, और हम जानते हैं कि कहानियों में जब सब कुछ नियंत्रण में होता है
तो कोई ना कोई धमाका जरूर होता है।
हाँ, तो यहां वो क्या है?
वो धमाका एक एक खुशखबरी के रूप में आता है, रोजी गर्भवती है।
वाह,
लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जो बात किसी भी जोड़े के लिए जश्न का मौका होनी चाहिए।
वो उनके रिश्ते में तनाव की वजह बन जाती है।
बिल्कुल।
ऐसा क्यों? डॉन तो हर चीज को एक प्रोजेक्ट की तरह देखता है। मुझे लगता है उसने इसे भी।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो तुरंत इसे द बेबी प्रोजेक्ट का नाम दे देता है।
ये तो होना ही था।
और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। डॉन के लिए ये एक और समस्या है जिसे दक्षता और तर्क से हल किया जा सकता है।
और रोजी के लिए?
रोजी को चाहिए भावनात्मक सहारा, और डॉन उसे दे रहा है डेटा और विश्लेषण।
अच्छा,
वो गर्भावस्था पर रिसर्च कर रहा है, डाइट के लिए स्प्रेडशीट बना रहा है, यहाँ तक कि सबसे अच्छे आनुवंशिक गुणों वाले डॉक्टर की तलाश कर रहा है।
ओ, तो मतलब यहाँ पर डॉन की दुनिया रोजी की दुनिया आपस में टकरा जाती हैं।
बुरी तरह से, रोजी को एक पार्टनर की जरूरत थी जो उसका हाथ थामे, उसकी सुने।
उसे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं चाहिए था।
एकदम सही। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है, कि वो इस प्रोजेक्ट का बस एक हिस्सा है, और यहीं से उनके बीच एक खाई बननी शुरू हो जाती है।
चलिए डॉन के किरदार को थोड़ा और कुरेदते हैं, क्योंकि उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही इस किताब का दिल है ना?
बिल्कुल। डॉन की दुनिया तथ्यों और तर्क पर चलती है। उसे सामाजिक इशारे, छोटी मोटी बातें, ये सब समझ नहीं आता। माना जाता है कि उसे एस्पर्जर सिंड्रोम हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी कहानी हमें उसी के नजरिए से सुनाई जाती है।
हाँ, और यही लेखक की खूबी है, हम भी दुनिया को उसी की तार्किक सीधी आंखों से देखने लगते हैं।
और कई बार हमें लगता है कि शायद वो सही है और हमारी सामाजिक रस्में ही बेतुकी हैं।
सही कहा। और ऐसा नहीं है कि वो बुरा इंसान है, वो रोजी से बहुत प्यार करता है और एक बेहतरीन पिता बनना चाहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
कोई शक नहीं, लेकिन उसके तरीके, उफ, वो इतने अजीब हैं कि वो मदद करने के बजाय नुकसान कर बैठते हैं।
जैसे वो स्प्रेडशीट।
हाँ, उसके लिए वो प्यार का इजहार है, वो बता रहा है कि उसे कितनी परवाह है, पर रोजी को वो एक जांच सूची लगती है, जैसे वो कोई इम्तिहान दे रही हो।
मुझे डॉन की वो एक मशहूर लाइन याद आती है जहां वो सोचता है,
कौन सी?
शायद मैंने दुनिया की समस्याओं का हल ढूंढ लिया था, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि जब आपकी पत्नी रो रही हो तो क्या करना चाहिए।
हाँ, ये एक लाइन में सब कुछ कह देती है।
बिल्कुल।
उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, लेकिन इंसानी भावनाओं के आगे उसका सारा तर्क फेल हो जाता है।
और यही उसकी यात्रा है इस उपन्यास में, एक प्रबंधक से साथी बनने की। उसे ये सीखना है कि हर समस्या का समाधान नहीं होता, कभी कभी सिर्फ साथ होना ही का ही होता है। ये उसके लिए एक बहुत मुश्किल सफर है।
लेकिन डॉन की तार्किक दुनिया में तो हम झांक रहे हैं, पर इस सबके बीच रोजी पर क्या बीत रही होगी? रोजी के ये बहुत अकेला कर देने वाला अनुभव है। वो एक बहुत समझदार, आत्मनिर्भर महिला है, लेकिन गर्भावस्था उसे भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर बना देती है। और ऐसे समय में उसे लगता है कि उसका पति उससे मीलों दूर जा रहा है। उसे लगता है कि उसका शरीर, उसकी जिंदगी सब एक वैज्ञानिक प्रयोग बन गया है।
वैसे एक स्तर पर ये थोड़ा अनुचित भी लग सकता है. मतलब रोजी ने जब डॉन से शादी की थी तो वो जानती थी कि वो कैसा है.
ये एक बहुत अच्छा सवाल है और कहानी इसी तनाव से जूझती है।
तो
रोजी जानती है कि डॉन का इरादा नेक है, लेकिन उसके सब्र का बांध भी तो टूट रहा है।
हाँ ये भी है.
उसका विकास इसी में है कि वो अपनी जरूरतें साफ साफ कहना सीखती है, और अंत में तमाम निराशा के बावजूद वो डॉन के अजीब तरीकों के पीछे छिपे उसके गहरे प्यार को देख पाती है।
और इस मुश्किल सफर में वे अकेले नहीं हैं, उनके दोस्त जीन और क्लॉडिया भी तो हैं.
हाँ, बहुत अहम भूमिका है उनकी। जीन डॉन का सबसे अच्छा दोस्त अपनी पत्नी क्लॉडिया से झगड़कर उनके छोटे से अपार्टमेंट में रहने आ जाता है।
मतलब घर में और उथल पुथल.
बिल्कुल। और जीन का किरदार डॉन से एकदम उल्टा है, मनमौजी, आकर्षक,
और वो डॉन को ऐसी सलाह देता है जो उसे और मुश्किल में डाल देती है.
अक्सर। और क्लॉडिया, जो एक मनोवैज्ञानिक है, वो शायद इस कहानी में तर्क की आवाज है।
या यूं कहें कि भावना की आवाज है.
सही कहा, वो डॉन के लिए तर्क और भावना के बीच एक पुल का काम करती है। वो उसे आईना दिखाती है, वो डॉन को वो सलाह देती है जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है।
तो डॉन की नेक इरादों वाली योजनाएं एक एक करके नाकाम होने लगती हैं. वो कौन सी घटनाएं हैं जो उनके रिश्ते के तनाव को मतलब चरम पे पहुंचा देती हैं?
ओह, ऐसी कई मज़ेदार लेकिन दिल दुखाने वाली घटनाएं हैं। एक तो वो सीन है जहां डॉन बच्चों के व्यवहार पर शोध करने के लिए एक पार्क में जाता है।
ओहो, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ.
वो एक क्लिपबोर्ड पर बाकायदा नोट्स ले रहा है, बच्चों के खेलने के समय को माप रहा है।
मतलब बच्चों के साथ भी एक वैज्ञानिक प्रयोग.
हाँ, और जाहिर है दूसरे माता पिता उसे एक अजीब संदिग्ध इंसान समझते हैं।
और
और
पुलिस को बुला लेते हैं.
बिल्कुल, ये डॉन की कहानी का सार है, नेक इरादे और सामाजिक तबाही।
और एक घटना तो उसकी गिरफ्तारी तक पहुंच जाती है ना.
हाँ, और वो शायद कहानी का सबसे निचला बिंदु है। वो अपनी एक सहकर्मी लिडिया के बेटे की मदद करने की कोशिश करता है, जिसे स्कूल में कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं।
लेकिन डॉन का तरीका क्या होता है?
वो एक वेट सूट पहनकर उस टकराव के बीच में कूद पड़ता है।
क्या?
हाँ, नतीजा ये होता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो सहकर्मी लिडिया खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है।
हो, तो डॉन ने अनजाने में अपनी फाइल पर एक बहुत बड़ा लाल निशान लगवा लिया.
बिल्कुल, सामाजिक सेवाएं उसे एक अयोग्य पिता के रूप में चिन्हित कर देती हैं। ये डॉन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
और रोजी पर इस सब का क्या असर होता होगा, ये सोचना भी मुश्किल है.
रोजी के लिए ये आखिरी तिनका साबित होता है। डॉन की गलतियां, पुलिस का चक्कर, सामाजिक सेवाओं का खतरा, ये सब उसके लिए असहनीय हो जाता है। एक बहुत ही दिल तोड़ने वाले सीन में वो डॉन से कहती है कि वो उसकी मदद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है।
मतलब उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया.
और उसने अपना परिवार खो दिया है।
तो इस सबसे निचले बिंदु से वापसी कैसे होती है जब आपका पूरा तार्किक ढांचा ही बिखर गया हो, तो आप चीजों को जोड़ते कैसे हैं?
वापसी का रास्ता उसे अकेले नहीं मिलता, उसके दोस्त जीन और क्लाउडिया उसकी मदद करते हैं। उन्हीं के साथ बात करके डॉन को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो समस्याओं को सुलझाने पर इतना इतना ध्यान दे रहा था कि वो ये देखना ही भूल गया कि उसकी पत्नी को क्या चाहिए।
कि वो एक प्रबंधक बन गया था, साथ ही नहीं.
बिल्कुल, तो वो एक और योजना बनाता है, लेकिन इस बार शायद अलग तरह से।
हाँ,
जिंदगी में पहली बार डॉन एक ऐसी योजना बनाता है जो तर्क पर नहीं बल्कि भावना पर आधारित होती है।
वाह,
वो समझ जाता है कि इस बार स्प्रेडशीट और डेटा काम नहीं आएंगे।
इसे कुछ और करना होगा.
उसे रोजी को ये दिखाना होगा कि वो उसे समझता है, उसकी भावनाओं की कदर करता है, और वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक ऐसा कदम उठाता है जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है।
और कहानी का अंत एक उम्मीद के साथ होता है.
जी, डॉन और रोजी फिर से एक हो जाते हैं, और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अब उसमें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि समझ भी शामिल है।
तो डॉन बदल जाता है.
नहीं, वो बदला नहीं है, वो अब भी वही तार्किक इंसान है, लेकिन उसने सहानुभूति और लचीलेपन की अहमियत सीख ली है। उपन्यास उनके बेटे हडसन के जन्म के साथ खत्म होता है, जहां वे दोनों मिलकर पितृत्व की उस अप्रत्याशित बेतरतीब दुनिया का सामना एक टीम के रूप में करते हैं।
तो अगर हम इस कहानी से निकले मुख्य विषयों को समेटें, तो सबसे पहला तो यही है कि प्यार तर्क से परे है.
हाँ, और दूसरा, पितृत्व की अव्यवस्थित सच्चाई, ये कोई आदर्श तस्वीर नहीं बल्कि एक खूबसूरत और तनावपूर्ण अराजकता है।
और इसके साथ ही न्यूरोडाइवर्सिटी और स्वीकृति का विषय भी बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी। ये कहानी हमें उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाती है जिनका दिमाग हमसे अलग तरह से काम करता है।
और आखिर में समुदाय का महत्व, दोस्त कितने जरूरी होते हैं।
बिल्कुल, वो अपने दोस्तों के बिना इस संकट से कभी बाहर नहीं निकल पाते।
मेरे ख्याल से ये किताब सामान्य रिश्ते की हमारी जो परिभाषा है उसे चुनौती देती है और दिखाती है कि प्यार कई शक्लों में कामयाब हो सकता है,
सबसे ज्यादा इंसानी भी हो। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।